वालो प्रभु का प्यार कर है माना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार।
ओम शांति। बाप दादा ने हमें पुरुषार्थ की एक विधि बताई है, सबके आशीर्वाद के पात्र बनना। और उसका एक सहज तरीका है श्रीमत को फौरन फॉलो करना। आइए इसी विषय पर हम कुछ स्पष्टीकरण की बातें सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है शांतिवन के आदरणीय रामलोचन भाई जी।
ओम शांति। हम आप सभी आत्माएं परम आत्मा की संतान हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे माना ही बाप की प्रॉपर्टी के अधिकारी, बच्चा माना ही बाप का संपूर्ण वर्षा लेना। तो हम आप सभी आत्माएं बाप से अपना वर्षा ले रहे हैं। संगम युग पर शिव बाबा है तो संगम युग पर शिव बाबा का वर्षा है ज्ञान गुण और शक्तियां, ये बाप का वर्षा है। सतयुग में चलने का अधिकार मिलता है लेकिन पद बाप का वर्षा नहीं लेकिन पढ़ाई की प्रालब्ध है। तो ज्ञान गुण शक्तियां ये बाप का वर्षा है जो वर्तमान समय मिल रहा है। वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वर्षा बच्चा चाहे लायक है चाहे ना लायक है लेकिन वर्षा समान रीति से मिलता है। लौकिक दुनिया का नियम है। तो बाप का वर्षा भी हम आप सब आत्माएं नंबर वार हैं, ज्ञान में भी चाहे एक साल के हैं चाहे 70 साल के हैं लेकिन ज्ञान सबको समान रीति से मिलता है। अभी बाबा परसों आएगा 2 तारीख को, तो जो मुरली चलाएगा वही मुरली नयों के लिए है और वही मुरली 70 साल पुराने वालों के लिए। तो ज्ञान पर सबका समान अधिकार है, वर्षे पर समान अधिकार है। हाँ, दादियां या बड़े भाई जो बाबा से पर्सनल मिलते हैं, बाबा उनको पर्सनल कुछ देता है, तो जैसे लौकिक में बच्चा जो लायक होता है उसको माँ बाप छिपाकर कुछ थोड़ा देते। तो अगर हम आप सब भी लायक बनते जाएंगे, जैसे दादियां या बड़े भाई बने हैं, तो हमको भी छिपा कर दे देगा। लेकिन जो लायक बन चुके हैं उनको बाबा दे रहा है। एक लायक को देता है और एक जो बहुत कमजोर होता है उनको भी देता है। तो जैसे कई बच्चे अपनी समस्या का समाधान बाप से पूछते हैं, तो बाबा उसका भी समाधान देता है। तो ज्ञान गुण शक्ति ये तो बाप का बरसा है, मिलता है, लेकिन बाप का बरसा एक और है, वो है आशीर्वाद। बच्चे का बाप से आशीर्वाद प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है। आशीर्वाद की प्राप्ति की विधि है आज्ञाकारी बनना। चाहे बुद्धि कम हो चाहे ज्यादा हो, विशेषता कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर आज्ञाकारी हैं तो आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जैसे आप अपने लौकिक घर में देखो कि एक बच्चा बहुत कमाता है लेकिन आपका कहना नहीं मानता है, एक बच्चा है जिसकी बुद्धि कम है लेकिन आपका कहना मानता है, तो दोनों में आपकी आशीर्वाद किसके प्रति ज्यादा होगी? आज्ञाकारी बच्चे के प्रति। सदा यही दिल में रहेगा कि भगवान इसकी भी बुद्धि तेज हो जाए, ये भी कमाने लगे। मतलब दिल की दुआएं आज्ञाकारी बच्चों के लिए सदा निकलती रहती है। लेकिन एक है आज्ञाकारी बनकर आशीर्वाद लेना और एक है जो बाप ने आज्ञा दी उस आज्ञा को उसी समय और उसी रूप से फॉलो करने में प्राप्ति बहुत ज्यादा है। तीन प्रकार की प्राप्तियां होती है। सिर्फ आज्ञाकारी बनने से आशीर्वाद मिलता है, लेकिन आज्ञा को तुरंत फॉलो करो। जैसे बाबा ने कहा है, जिस विधि से कहा है, तो तीन प्राप्तियां होती है। एक, आशीर्वाद तो मिलता ही है। दूसरा है कि तुरंत आज्ञा की पालना के कारण मीठे बाबा के ये शब्द, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश, ये बाबा के शब्द अंदर से इतनी हिम्मत दिलाते हैं और ऐसा लगता है कि भगवान के प्रति प्यार बढ़ता जा रहा है, भगवान पर कुर्बान होने की भावना बढ़ती जा रही है। और तीसरी प्राप्ति होती है शक्ति की। आप जिस समय बाबा ने कहा उसी समय आप करके देखो, बाबा देखता है कि इस बच्चे ने आज्ञाकारी का पार्ट बजाया है, लेकिन इस बच्चे में शक्ति की कमी है, तो बाबा इष्ट्रा शक्ति कहो, सकास कहो, देकर उस बच्चे को समर्थ बना देता है। उदाहरण के रूप से माउंट आबू में शुरू में जब साकार बाबा था, उस समय की बात है कि एक बार बाबा ने शाम के क्लास में कुछ होमवर्क दिया, अपने जगदीश भाई भी थे जो सारी किताबें लिखी है, जगदीश चंद्र सीजा, और सब क्लास में थे, तो बाबा ने होमवर्क दिया और बोला सुबह आप लोग हमें लिख करके लाना। तो उस समय नियम था कि 10:15 बजे कमरे की लाइट सबकी ऑफ कर दी जाती थी, सो जाते थे। तो जब कमरे की लाइट ऑफ हो गई तो फिर कोई लिखेगा कैसे, तो सबने सोचा अच्छा सुबह क्लास के बाद लिख लेंगे। लेकिन जगदीश भाई को संकल्प आया कि बाबा ने कहा है और मुझे अभी करना है, अभी करना है, तो वो कमरे से निकल करके बाहर आ गए और जो बाहर लाइट जलती थी उस लाइट में बैठ करके होमवर्क किया। और सुबह जब बाबा ने पूछा कि किसने होमवर्क किया है, तो सबने तो कारण बताए, लाइट नहीं थी। जगदीश भाई ने कहा बाबा हमने किया है। उसी समय बाबा ने जगदीश भाई को वरदान दे दिया, आज्ञाकारी बनने का, तुरंत आज्ञाकारी बनने का फल मिल गया। तो आज्ञाकारी सिर्फ नहीं बनना है, लेकिन आज्ञा जिस समय बाबा देता है, जिस रूप से देता है, उसी समय अगर उस आज्ञा की पालना करो तो बहुत बहुत प्राप्ति होगी। आप सोचो, मान लो आप एक काम अपने बच्चे को कहो कि ये काम कर लेना, और वो बच्चा वो काम उस समय न करके थोड़े समय के बाद करे, तो आपका प्यार कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और अगर उसी समय करता तो आप उसके काम में सहयोग भी करते। तो ऐसे अगर हम बाबा की श्रीमत जिस समय बाबा कहता है अगर उसी समय हम फॉलो कर लें तो बहुत बहुत प्राप्ति हो सकती है। आशीर्वाद के के साथ वरदान, शक्ति और शाबाश शाबाश के बोल महान बना देंगे। अब बाबा हमें श्रीमत किस रीति से देता है, कौन सी श्रीमत हम फॉलो करें? बाबा हम आप सबको श्रीमत 5 प्रकार से देता है। 5 प्रकार की श्रीमत को फॉलो करना, जिस समय जिस श्रीमत की आवश्यकता है या डायरेक्शन मिला है, उस समय उस श्रीमत को फॉलो करो। पहली श्रीमत है बाबा मुरली के द्वारा हम आप सबको श्रीमत देता है, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। दूसरा है दिव्य संदेश के द्वारा बाबा संदेश देता, ऐसे करो ऐसे करो, वो भी श्रीमत। तीसरा है आप जब योग में बैठते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, बाप के पास बैठ जाते हैं, तो कई दिव्य टचिंग होती, या बाबा से आप अपने पुरुषार्थ के बारे में या विश्व सेवा के बारे में पूछते हैं, बाबा बताता है, वो भी श्रीमत। चौथा है जो पर्सनल बाबा से मिलते हैं, बाबा जो उनको बताता है वो उनके लिए श्रीमत है। और 5वां है जो निमित्त आत्माओं के द्वारा डायरेक्शन मिलता है, मधुबन से कोई डायरेक्शन गया या निमित्त आत्माओं के द्वारा डायरेक्शन मिला, उसे श्रीमत कहा जाता है। श्रीमत का अर्थ ही है श्री अर्थात सर्वश्रेष्ठ, और मत अर्थात राय। तो जो सर्वश्रेष्ठ है और जो मत देता है, उस मत से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ मत से होती है। तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद है देवी देवता पद, लक्ष्मी नारायण पद। तो जिस श्रीमत से देवी देवता पद की प्राप्ति होती हो, उसे श्रीमत कहा जाएगा। क्योंकि और किसी के भी मत से देवी देवता नहीं बन सकते। इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन जाएंगे लेकिन देवी देवता नहीं बन सकते। कई ऐसा समझते हैं कि टीचर तो टीचर हैं, बाबा की श्रीमत श्रीमत है, अगर निमित्त आत्मा ने दिया तो हो सकता है निमित्त आत्मा गलती भी कर सकती है। तो क्या हम उसकी मत को श्रीमत माने, फॉलो करें, कहना माने? बहुत सुंदर बाबा ने इसका जवाब दिया था। एक बार विदेश वालों ने बाबा से पूछा था कि जब हर आत्मा का डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, हर आत्मा परमात्मा से ही वर्षा ले रही है, तो जब परमात्मा से ही वर्षा ले रही है तो परमात्मा के ही मत पर हम क्यों न चलें, हम क्यों किसी देहधारी के मत पर चलें, निमित्त का कहना हम क्यों माने। बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि जिन आत्माओं को बाबा ने निमित्त बनाया है, हम आपने नहीं बनाया है, बाबा ने निमित्त बनाया है, तो वो आत्माएं भगवान के द्वारा निमित्त बनी हुई होने के कारण जो राय देंगी वो भगवान की बताई हुई बात ही आपको राय में बताएंगी कि बाबा ने यह श्रीमत दी है, इसको फॉलो करो। आपको निमित्त आत्मा से पूछना क्यों जरूरी है? बाबा ने कहा था कि कई बार जब आपके ऊपर समस्या आती है, कुछ विघ्न आता है, तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मन डिस्टर्ब हो गया तो बाबा से तो कनेक्शन जुट ही नहीं सकता है, ले ही नहीं सकता है, श्रीमत ले ही नहीं पाएगा। तो निमित्त आत्माओं से राय ले लो और आगे बढ़ जाओ। तो बाबा ने कहा था निमित्त आत्माओं को आपके पुरुषार्थ को सहज आगे बढ़ाने के लिए रखा है, उसकी जिम्मेदारी बाप के ऊपर। तो पांच प्रकार की श्रीमत बाबा देता है। अब इन पांचों प्रकार के श्रीमत को हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे लाएं? चलो बाबा के पास।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का
शांति। पहली श्रीमत है मुरली। मुरली धारण करने की विधि तीन बातें हैं। अगर तीन बातें प्रैक्टिकल में ले आओ तो आप मुरली को प्रैक्टिकल जीवन में ला सकते हो। पहली बात है दिल की लगन। दूसरी बात है बुद्धि की दिव्यता। और तीसरी बात है मुरली से रोज एक पॉइंट धारणा के लिए लेना। ये तीन बातें हैं। पहली बात है लगन। आप अनुभव करके देखो, कल करके देखो कि आप सिर्फ दिल की लगन उत्पन्न करो कि आज मुझे बाबा के श्री मत पर अवश्य चलना है। आज मुझे बाबा की आज्ञा की पालना करनी है, क्योंकि इस आज्ञा की पालना से ही मैं आत्मा महान बनूंगी। बाप दादा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूंगी। आप यह संकल्प दिल से करके देखो, तुरंत आप देखेंगे कि अंतर्मुखी बनना शुरू हो जाएंगे। जितना पॉइंट पर ध्यान गया कि मुझे ये करना है, तो अंतर्मुखता आती जाएगी। और जहां अंतर्मुखी बने, तो अंतर्मुखी बनते ही सबसे पहला फायदा है कि आपके अंदर जो आत्मा की शक्तियां मर्ज हो चुकी हैं, वो शक्तियां इमर्ज होने लगी। आप आत्माएं ही कल्प पहले देवी या देवता बने थे, पक्की बात है। विजयी आप ही बने थे, आत्मा में वो सब शक्तियां भरी हुई है, सिर्फ मर्ज है। तो जैसे अंतर्मुखता की तरफ जाओगे, अंतर्मुखता अर्थात आत्मा पर ध्यान, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान पर ध्यान, तो जितना अंतर्मुखता में जाओगे, तो आपकी आंतरिक शक्ति इमर्ज होने लगेगी। और जहां आंतरिक शक्ति इमर्ज होने लगी, फिर आत्मा में हिम्मत आ जाती है कि मैं कर सकती हूं। और जैसे करने का शुरू करते हैं, तो हिम्मते बच्चे मध्य बाप, बाप की मदद मिलना शुरू हो जाती और सफलता मिल जाती। तो पहली बात, अपने दिल की लगन चाहिए, लगन उत्पन्न करो। लगन उत्पन्न करने की विधि ही है कि सोचो, हमें श्रीमत की पालना से कितनी प्राप्तियां हैं। अगर उन प्राप्तियों को सामने लाओगे, तो लगन अपने आप उत्पन्न होगी, करने का संकल्प उठेगा, करना है। तो पहली बात है लगन, और दूसरी बात है बुद्धि की दिव्यता। ये तो आप बाबा की मुरली में सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। अर्थ यही है कि परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाओ। बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि है मैंपन की बुद्धि, जो देह अभिमान की बुद्धि है, इस बुद्धि को भगवान के आगे समर्पण कर दो। भगवान के आगे समर्पण कर दो। समर्पण करना ही दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है। जैसे लौकिक दुनिया में पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, देना ही लेना है। ऐसे आप बाबा को मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि दो और दिव्य बुद्धि का वरदान लो। किस विधि से देंगे? देने की विधि यही शुभ संकल्प के द्वारा कि बाबा ये मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि अब बाबा आपके आगे समर्पण है। आपने ये संकल्प किया कि बाबा आपके आगे समर्पण है, बाबा रिस्पांस देगा, अच्छा अब इस बुद्धि से आपका अधिकार खत्म हुआ, अब जिसको दे दिया उसका अधिकार है, अर्थात अब इस बुद्धि से श्रीमत के प्रमाण ही जजमेंट करना, जैसा श्रीमत कहती है उसी प्रमाण निर्णय देना, अपनी मत नहीं चलाना। श्रीमत प्रमाण निर्णय देना ही दिव्य बुद्धि का वरदान मिलना। अब कैसे समझें कि हमने अपनी बुद्धि भगवान के आगे समर्पण कर दी है? एक उदाहरण के रूप से समर्पण बुद्धि की निशानी क्या है? मान लो हम आप में से या आपके सेंटर पर कहीं भी आपसे कोई बड़ा भाई या बहन है, निमित्त है मान लो, और उससे कोई गलती हो जाती है। आप देखते हैं उससे गलती हुई है, तो गलती करते हुए देखकर आपको क्या संकल्प आएगा? क्या संकल्प आएगा? यही कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये निमित्त हैं। अगर बड़े लोग ही ऐसे करेंगे तो छोटे के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यही संकल्प आएगा ना? क्या विचार है? यही संकल्प आएगा ना? लेकिन ये संकल्प अगर आया तो माना बुद्धि को समर्पण नहीं किया है। आप अपनी बुद्धि से अपने प्रकार से जजमेंट ले रहे। अगर समर्पण किया हुआ होता तो क्या आता, क्या जजमेंट देते कि बाबा ने कहा है सी फादर डोंट ब्रदर एंड सिस्टर, सिर्फ बाप को देखो किसी भाई बहन को नहीं देखो, या कहा है बाबा ने किसी भाई बहन की कमी देखो, नहीं बाबा को देखो। तो अगर बुद्धि समर्पण होती, दिव्य बन गई होती तो दिव्य चीज तो दिव्यता देखेगी और अवगुण वाली चीज अवगुण देखेगी। अगर समर्पण नहीं हुई है तो दिव्य बनी ही नहीं है। दिव्य बनाने के पुरुषार्थी हो लेकिन बनी नहीं, इसलिए बुद्धि को दिव्य बनाओ। अर्थात इस देह अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि, इससे आप ट्रस्टी हो जाओ, बाबा की है, बाबा जाने। अर्थात जैसे बाबा की श्रीमत है उस प्रकार से निर्णय देना। तीसरी बात है, मुरली से एक पॉइंट रोज धारणा के लिए लेना, ये कल से करना, देखना प्रैक्टिकल फायदा होता क्या है। हम सब सारी मुरली सुन लेते हैं और फिर सोचते हैं अच्छा कोई पॉइंट ले लेंगे, और रिजल्ट ये होता है कि कुछ नहीं पुरुषार्थ के लिए ले पाते। तो अगर एक पॉइंट आप रोज अपने लिए लो कि आज मुझ आत्मा को इस पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है रोज, अगर एक दिन में आप एक पॉइंट को प्रैक्टिकल ले आओ, अर्थात जिस पॉइंट पर आप 10-12 घंटा अटेंशन देंगे, क्या वो पॉइंट आपकी नहीं बन जाएगी? हो जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में सोचो संपूर्ण बनने में देरी है, होगी देरी बनने में। लेकिन हम करते क्या हैं, मन को टोटल फ्री छोड़ देते। अगर मन टोटल फ्री है तो क्या कहते हैं मन के लिए, खाली मन शैतान का घर। तो पास्ट जन्म की बातें सोचना शुरू करेगा। और यह ध्यान रखो कि अगर पास्ट जन्म की बातें अगर अभी भी याद आती हैं तो भूलना बहुत 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 मुश्किल होगा। मान लो आप एक हफ्ता पुरुषार्थ किया किसी चीज को भूलने के लिए, और एक हफ्ते के बाद वो बात याद आ गई। अब चूंकि वायुमंडल ही वही है, वो एक बार याद आई तो फिर उसको भूलने में हफ्ता ही लग जाएगा, जाएगी नहीं। क्यों? पुराने संस्कार तो है ही है ना। इसलिए मन को खाली नहीं छोड़ो, मन को काम दो, होमवर्क दो, आज ये करना ही है, आज ये करना ही है, ये कल से पक्का करो। हर एक को जो पॉइंट अच्छी लगे, जैसे आज रतन मणि दादी कह रही थी, बहुत अच्छी बात थी कि अगर एक पॉइंट पर, किसी विशेष पॉइंट पर आप अपना मनन चलाते रहो तो सब बातों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वहां बिजी हो जाएंगे। तो इसलिए एक पॉइंट रोज अपनी मन पसंद एक पॉइंट लो कि आज मुझे करना है। हो सकता एक दिन में विजयी न बनो, लेकिन अगर आप कितना भी पुरुषार्थ किया वो आपको उतना विजयी बनाएगा। कई बार होता क्या है कि कई बाबा के बच्चे किसी बात पर बहुत पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करते करते जब रिजल्ट नहीं निकलने को आता है, सफलता नहीं मिलती है, तो दिल शिकस्त हो जाते। लेकिन याद रखो, मान लो कोई बहुत बड़ा पत्थर है, अगर आप उस पत्थर को तोड़ना शुरू करो तो जब आप पहला हथौड़ा उसके ऊपर मारोगे तो ऐसे हथौड़ा वापस आ जाएगा जैसे लगा ही नहीं कि कुछ हथौड़ा पड़ा भी है इसके ऊपर। लेकिन बार 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 मारते मारते आखिरकार लास्ट में टूट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लास्ट हथौड़े से टूटा है, नहीं, पहले हथौड़े से ही कमजोर होना शुरू हो गया था। तो यह ख्याल रखो, जितना आपने पुरुषार्थ किया, जितना अटेंशन दिया, पुराने संस्कारों पर विजय मिली है। हाँ, कोई बहुत कड़े हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन छोड़ो नहीं कि होता ही नहीं है, होता है। सिर्फ अगर बीमारी ज्यादा है तो थोड़ा दवाई ज्यादा समय करनी पड़ेगी, बाकी दवाई एक्यूरेट है तो बीमारी तो खत्म होनी है। इसलिए पुरुषार्थ जरूर करो। दूसरी बात है दिव्य संदेश, जो बाबा जैसे भोग लगता है, कल भी भोग लगेगा, बाबा जो संदेश देता है तो भोग वाला संदेश ऐसा होता है, या कुछ समय अनुसार बाबा से पूछते हैं तो वो उस समय के वायुमंडल परिस्थिति के प्रमाण बाबा संदेश देता है। वो संदेश उसी समय धारण करने में बहुत 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 फायदा है, क्योंकि उस समय वायुमंडल परिस्थिति को, बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है उसको देख करके बाबा संदेश देता है। तो दिव्य संदेश, जो भी संदेश मिले धारण करने का लक्ष्य रखो, करो। तुरंत करने का बताया कि कितना बड़ा फायदा है, बाबा की कितनी आशीर्वाद वरदान शक्तियां मिल जाएंगी। तीसरी बात है योग में दिव्य टचिंग, हर एक को अनुभव होगा कि कई बार योग बहुत अच्छा लग जाता है तो अनुभव होता है, और कई बार हम बच्चे कुछ अपने काम के बारे में, सो पुरुषार्थ के बारे में या विश्व सेवा के बारे में बाबा से पूछते हैं और बाबा बताता है, लेकिन वो जो हमने पूछा वो बाबा की ही टचिंग है या मेरे अपने संकल्प हैं, कैसे पता पड़ेगा कि ये टचिंग बाबा की ही है? कई बार अपने संकल्प भी आते हैं लेकिन बाबा की टचिंग है, बाबा ने टच किया है, कैसे पता पड़ेगा? अच्छा, इसकी चार निशानी है। जो बाबा की टचिंग होगी उसकी चार निशानी है, या जो आप बाबा से पूछते हो या बाबा बताता है, चार निशानी है। पहली निशानी है कि जो बाबा की टचिंग होगी तो आपको उस टचिंग से इतना खुद से संतुष्टता होगी कि हाँ 100% राइट है, नहीं अंदर से फुल सेटिस्फेक्शन होगा, राइट है, एक संकल्प का इधर उधर का नहीं होगा, राइट। तो पहली बात 100% संतुष्टता होगी कि ये राइट। दूसरा है जो बाबा की टचिंग होगी तो आपके मन में आएगा कि यह संकल्प तो मेरे पास था ही नहीं, ये तो मेरे शक्ति से बाहर की चीज थी, बाबा की टचिंग। वो संकल्प आपके पास नहीं था, बाबा की टचिंग। तीसरी निशानी है कि जो बाबा की टचिंग होगी, आप जिसको भी कहोगे वो आपकी बात को मानेगा, आपकी बात का सम्मान करेगा, हा ये राइट मानेगा। और चौथी निशानी है उसमें सफलता मिलेगी, पूर्ण रूपेण सफलता मिलेगी। ये चार निशानी है बाबा के टचिंग की। अब बाबा से टचिंग लेने की विधि क्या है, बाबा कैसे हमको टच करे, यथार्थ टचिंग बाबा से ले सके। बाबा से यथार्थ टचिंग लेने की विधि है कि जब आप योग में बैठो तो जो आप को बाबा से पूछना है वो संकल्प तो शुरू में लिया, उसके बाद फिर एकदम संकल्प खत्म कर दो, आप बाबा की याद में मस्त हो जाओ, फिर बाबा अपने आप ही टच करेगा, एकदम प्लेन हो जाओ, एकदम प्लेन बन जाए बुद्धि, फिर बाबा की टचिंग आएगी। कई बार क्या होता, जब योग में बैठते हैं पूछना है बाबा से, सोचते बाबा ने फलानी मुरली में कहा था इसका ऐसे का ऐसे होता है, ऐसे का ऐसे होता है, उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए टोटल बुद्धि को प्लान कर दो, बाबा के पास आत्मा को बिठा दो, फिर यथार्थ टचिंग मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई बात। और चौथा है पर्सनल बाबा मिलता है, पर्सनल मिलने में पर्सनल श्रीमत है, वो श्रीमत उसके लिए ही होती है, वो श्रीमत सबके लिए नहीं होती है। जैसे एक बार बृजमोहन भाई और रमेश भाई बॉम्बे वाले दोनों बाबा से मिल रहे थे, और दोनों सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो दोनों बाबा से मिल रहे थे तो दोनों ने यही कहा, बाबा हमें बाहर का चाय पीना पड़ता है, अगर नहीं पिए तो वो लोग नाराज होते, तो क्या करें। तो बाबा ने रमेश भाई को बोला कि तुम्हें नहीं पीना है, और बृजमोहन भाई को बोला तुम्हें पीना है। देखो दोनों में अंतर, देखो हर एक की श्रीमत इंडिविजुअल है। बृजमोहन भाई को इसलिए बोला पीना है कि तुम ऑफिस, जितने ऑफिसर्स होते हैं उनकी मीटिंग में बैठते हो, चाय लाते हैं, अगर आप चाय नहीं पियोगे तो ऑफिसर लोग नाराज हो जाएंगे, और आप जो इतना छुट्टी लेते हो सेवा के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए चाय पी लिया करो। और रमेश भाई को बोला कि अगर आप चाय नहीं पिएंगे तो जिसका आप देखते हो हिसाब किताब, अगर उनके हाथ का चाय भी नहीं पियोगे तो वो तो इतना खुश होंगे कि ये तो कील साहब बहुत ईमानदार हैं, देखो मेरे हाथ का चाय भी नहीं पीते हैं, आपकी बहुत महिमा करेंगे। अब देखो वही बात इंडिविजुअल राय है, तो इंडिविजुअल राय इंडिविजुअल के लिए है, और जनरल जो श्रीमत देता बाबा जनरल देता है। और पांचवा है निमित्त आत्माओं के द्वारा श्रीमत, निमित्त आत्माएं जो देती हैं आपको राय श्रीमत, वो उस श्रीमत को अपने जीवन में ला चुकी हैं, उस श्रीमत से प्रैक्टिकल जीवन में कितना फायदा होता है वो उनको अनुभव है, तो अनुभव के आधार से आपको बताते, इसलिए उसको लाना जरूरी है प्रैक्टिकल भी। कई ऐसे कहते हैं कि निमित्त तो बना दिया है, अब दादी क्या जाने, बाबा क्या जाने, इस टीचर के अंदर क्या कमी है, निमित्त तो बना दिया। बहुत सुंदर बाबा ने कहा था, अच्छा अगर बाबा ने उसको निमित्त बनाया और आप समझते हो निमित्त के लायक नहीं, ठीक नहीं, इसका मतलब आप बाबा से ज्यादा समझदार हो कि जो बाबा की जजमेंट को रॉन्ग कर रहे हो। नहीं, निमित्त की रिस्पांसिबिलिटी बाबा के ऊपर, निमित्त भी क्या करेंगे, कौन सी राय देंगे, यही ना कि जिस राय से आप देवता बनो, दैवी गुण धारण करें, जीवन में श्रेष्ठता है, वही राय देंगे ना, तो यही तो सर्वश्रेष्ठ राय है, देवता बनना ही सर्वश्रेष्ठ पद है। और देवता बनने में जो मत मिले वही श्रीमत, वो बाबा देता है और बाबा से बच्चे सीखकर दूसरों को देते हैं। तो पांचों प्रकार की श्रीमत को प्रैक्टिकल जीवन में लाकर, और तुरंत अंडरलाइन है, बाप से आशीर्वाद, वरदान, शक्ति और शाबाश शाबाश के बोल प्राप्त करके स्वयं को सहज बाप समान बना सकते। अच्छा, ओम शांति।